ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने जगन्नाथपुरी में अपने जीवन के 48 साल में से 18 साल गुजारे। पहले 24 साल कहाँ पर गुजारे? मायापुर नवद्वीप में। अगले 6 साल दक्षिण भारत की यात्रा में बिताए, भ्रमण में, और फिर लौट के आए वापस। और जगन्नाथपुरी वापस आए, पहले भी गए थे लेकिन जगन्नाथपुरी में कंटिन्यूअस उन्होंने 18 साल निवास किया। तो उनका जो वो निवास है जगन्नाथपुरी का, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, तीव्र है, तीव्र, बहुत तीव्र निवास है वहाँ का। उसमें से कुछ पहले साल ही वो केवल पहले 2-3 साल ही पब्लिक में रहे, उसके बाद वाले सारे साल एकांत में रहे, गुप्त रूप में रहे, थे उधर ही लेकिन बाहर नहीं निकलते थे। गंभीरा में रहते थे वो, और गंभीरा में से जब भी कभी कभी गायब रहते थे अंदर, समझो गंभीरा के अंदर है, सबको पता है अंदर है, लेकिन कभी कभी अंदर से गायब हो जाते थे। और कहाँ मिलते थे? जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने, सिंह द्वार के सामने, 18-20 फुट का शरीर उनका। कैसे? नहीं, उनका तो 7 फुट 6 इंच का शरीर था, लेकिन वो भाव में आते थे तो हर एक जोड़ में 6-6 इंच की गैप बनती थी, इधर 6 इंच, इधर 6 इंच, इधर 6 इंच, उधर 6 इंच, ऐसे करके पूरे जॉइंट में 6-6 इंच का अंतर होता था, एक्सटेसी में, आनंद में। और लंबा शरीर ऐसा पड़ा रहता था, पहचानना में मुश्किल। कभी समुद्र किनारे मिलते थे ऐसे ही पड़े हुए, भाव में व्याकुल होकर भागते थे अभी। फिर भक्त लोग उनको रोकते थे, तो फिर वो, भक्तों की इच्छा है कि मैं नहीं बाहर जाऊं, इधर ही रहूं, तो व्याकुल होकर अपना सर जो है ना वो दीवार पे घिसते थे, व्याकुल होकर, भगवान के, जगन्नाथ के व्याकुल होकर, और पूरे कमरे में दीवार पे खून के धब्बे दिखते थे ऐसे। इतनी अति उत्कट प्रेम के अनुभव में उन्होंने वहां पर 18 साल बिताए। और जब राधा रानी ने उनको कहा ना, कि राधा रानी को भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा अगले अगले जन्म में अवतार लूंगा, और आपका भाव लेकर अवतार लूंगा, और आपका भाव लेकर मैं अनुभव करूंगा कि आपको मेरे मन में, मेरे विचार में क्या अनुभव करते हैं आप, वो मैं अनुभव करूंगा। तो राधा रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ जब मैं आप मेरा भाव लेंगे, मेरा भाव लेकर आएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाओगे आप, पहाड़ में से गिरोगे, पेड़ पे से गिरोगे, नदी में गिरोगे, पानी में गिरोगे, जो रोड पर गिरोगे, पत्थर पे गिरोगे, कांटों पे गिरोगे, अपने आप को जख्मी कर लोगे। ये मुझसे सहा नहीं जाता, विचार भी सहा जाता नहीं, अभी तो आगे आने की बात तो दूर है, लेकिन ऐसा होगा ये सोचकर मुझे बहुत असह्य हो रहा है, इसलिए अभी से बता रही हूँ कि मेरी कांति जो है ना, कांति यानी कि मेरा जो स्किन है वो मैं आप पर चढ़ा दूंगी ताकि आपको जख्म नहीं होगा। फिर भी ये वर्णन तो आता ही है कि वो खून से लथपथ होते थे कभी कभी। तो ये तो बाद वाली सालों की बात है, लेकिन उसके पहले जब परमानेंट जगन्नाथपुरी में रहना आरंभ किया, तो उन्होंने पहली रथ यात्रा में क्या किया, सबको बताया कि जगन्नाथ जी का जहाँ पर स्थान होने वाला है रथ यात्रा के बाद में, गुंडीचा मंदिर, उसका और एक नाम क्या है? हाँ, मौसीमा मंदिर नहीं, वो दूसरी जगह पर है, वो अलग मंदिर है एक जगह से, हाँ, लेकिन वो मौसीमा का मंदिर अलग है, गुंडीचा मंदिर अलग है। वो क्या है? वो गुंडीचा मंदिर है, मौसीमा का मंदिर अलग है। तो उस गुंडीचा मंदिर के दो और नाम है, वो क्या है बताइए? क्योंकि तो रेडीमेड सब बताने से कुछ भी याद नहीं रहता है, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा हिलाएंगे तो बाद में बताएंगे तो याद रहेगा आपको। बताइए गुंडीचा मंदिर का दूसरा नाम क्या है और तीसरा नाम क्या है? उड़िया वाले खाली बैठे। सुंदराचल उसको कहते हैं। और जगन्नाथ जी का वहां मंदिर है, वहां पर क्या किसको क्या बोलते हैं? नीलाचल, नीलाद्री, नीलगिरी, नील पर्वत। हाँ, और जगन्नाथपुरी जो मेन मंदिर है आज का, उसको और क्या बोलते हैं? उसको द्वारका भी बोलते हैं, वो भगवान की द्वारका का प्रतीक है। और गुंडीचा का और क्या नाम है? गुंडीचा मंदिर, सुंदराचल और गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन कहते हैं उसको। उसके पास में कौन सा मंदिर है बड़ा एकदम फेमस? जगन्नाथपुरी का बहुत फेमस मंदिर गुंडीचा मंदिर के पास में है, जिसको दर्शन किए बिना जगन्नाथपुरी का दर्शन पूरा नहीं होता है। यस, धाम में कभी भी मैकेनिकली जाना नहीं चाहिए। जैसे समझो आपकी बेटी की शादी करनी है आपको किसी के साथ में, तो कितना इंक्वायरी करते हैं आप, उसकी माँ कौन है, इसका भाई कौन है, वो क्या पढ़ता है, उसकी बहू कौन है, छोटी बहन क्या करती है, कितनी उम्र है उसकी, पापा क्या करते हैं, पापा के कितने भाई हैं, एकदम डिटेल, एड्रेस किधर है, कितने घर कमरे में, कितने कितने कमरे हैं घर में, लड़की क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, खाना बनाने को आता है कि नहीं आता है उसको, कितना इंक्वायरी करते हैं हम लोग। वैसे भगवान के घर जा रहे हैं तो पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। बताओ कौन सा मंदिर है? नरसिंह भगवान का मंदिर है। जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो नारद मुनि के निर्देश में स्थापन की गई थी और उसका पूजन किया गया था राजा इंद्रदुम्न के लिए। राजा इंद्रदुम्न ने उसका पहला पूजन किया और फिर उसके सानिध्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का योजना बनाया और वहाँ पर फिर भवन बनाए, सब लोगों को रहने की व्यवस्था किया और अश्वमेध यज्ञ का इंतजाम किया। तो वो नरसिंह भगवान का मंदिर, उसका पूजन करके ही सब कुछ शुरू हुआ। वो भी उसके पास पास में ही है, गुंडीचा मंदिर के बाजू में, जगन्नाथपुरी में। वो हमारे भक्ति वैभव पुरी महाराज थे, वो उनका आश्रम है उधर। उसके पास में कौन सा सरोवर है गुंडीचा मंदिर के पास? इंद्रदुम्न सरोवर। क्यों नाम पड़ा उसका इंद्रदुम्न सरोवर? राजा इंद्रदुम्न जब भी यज्ञ कर रहे थे ना, तो वहां पर उन्होंने लाखों करोड़ों और अरबों खरबों गाय लेकर आए थे। वो उनको पता था कि हमको दान करना पड़ेगा ना उनको, तो गाय को सबको एकत्र आकर खड़ा किया था उन्होंने उधर। तो कहते हैं गाय के वजन से वो भूमि दब गई और गाय ने बहुत मूत्र छोड़ा वहां पर। तो उसी जगह पर जो मूत्र इकट्ठा हुआ, जमीन भी धंस गई, वहां पर उन्होंने जल इकट्ठा करके सरोवर बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रदुम्न सरोवर। इंद्रदुम्न सरोवर में एक मंदिर है, सरोवर में वो कौन सा मंदिर है? उधर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है, जो पंचशिव है जगन्नाथपुरी के, उसमें एक महत्वपूर्ण शिव जी का मंदिर है वो। और उसमें राजा इंद्रदुम्न का मंदिर भी है जो बाद में बनाया गया, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन है। और जगन्नाथपुरी में समझने लायक चीज़ ऐसी है कि जगन्नाथपुरी में बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं, बहुत प्राचीन इतिहास मंदिर है, लेकिन उसमें से पांच शिव के मंदिर जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको देखे बिना जगन्नाथपुरी का दर्शन पूरा नहीं होता है। एक बताया नरसिंह भगवान का, एक जगन्नाथ भगवान तो है ही, और पांच शिव जी का दर्शन करना चाहिए। और पांच जल के स्थान हैं जो देखे बिना जगन्नाथपुरी का यात्रा परिपूर्ण नहीं होता है, वो आप लिख लीजिए, आगे भी काम आएगा आपको, याद रहेगा कि ऐसे ही देखे मेरा मुंह नहीं ना, तो लिखो उसको। सबसे पहला जो जल का आशय है उसका नाम है महोदधि। महोदधि का मतलब क्या है? समुद्र। महोदधि महातीर्थ, चाहे चैतन्य महाप्रभु उसको महातीर्थ कहा गया है, क्योंकि सागर वैसे ही तीर्थ होता है। क्यों बताइए? सागर तीर्थ क्यों होता है? कोई भी सागर, क्योंकि सब पवित्र नदियां सागर में आकर मिलती है। जो नदियां पवित्र होती है इसमें हम स्नान करते हैं, वो सारी आके कहाँ मिलती है? सागर में। कुछ अरबी समुद्र में, कुछ बंगाल के उपसागर में, कुछ हिंदी महासागर में। तो जगन्नाथपुरी के बाद में कौन सा सागर है? हाँ, बंगाल का उपसागर है, है ना? तो वो सागर, जगन्नाथपुरी का सागर जो है वो बंगाल के उपसागर का भाग है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, उसका अस्तित्व अपने आप में है। और वो महोदधि इसलिए है क्योंकि उसी में से जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म प्रकट हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? जब इंद्रधनु का यज्ञ पूरा हुआ तो इतनी सुंदर खुशबू आई कि पूरा जगन्नाथपुरी खुशबू से भर गया, और हवा भी समुद्र की ओर से जमीन की ओर आ रही थी, और समुद्र के अंदर बहुत बड़ा दिव्य प्रकाश फैल गया था, और उस दिव्य प्रकाश पे सबको, जब समुद्र के अंदर वो दारू ब्रह्म लकड़ी जो है ना वो नजर आई, सबको सबको नजर आई। और वो देखे तो कुछ भक्त लोग भाग के आए और राजा को बताया कि ऐसा प्रकाश फैल गया कि मानो भगवान ने अवतार लिया है। तो भागे वहां पर सब सैन्य लेकर, और फिर हाथी से गाड़ी बनाकर उसको उठाकर लेकर आए। एक कारण उसका यह है, तो विशेष है ना, अभी और कोई समुद्र में ऐसे भगवान पैदा नहीं हुए, तो ये समुद्र का हो गया। दूसरा कारण यह है कि श्री जगन्नाथपुरी जो है ना उसका नाम है, एक और नाम है, क्या नाम बताइए? फेमस नाम है, बहुत बहुत फेमस नाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। हाँ, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन से आकार में है? शंख के आकार में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? और एक नाम, शंख क्षेत्र। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी धाम है वो शंख के आकार का है, उसका नाम शंख क्षेत्र है, और पूरा शंख क्षेत्र के संपर्क में समुद्र है, इसलिए समुद्र बहुत पावन हो गया है, बहुत पवित्र हो गया है। क्योंकि जगन्नाथपुरी समुद्र को लग के है ना, पूरा समुद्र में ही तो है, वो समुद्र किनारे पे है, तो जहां जहां समुद्र किनारे जल को वो स्पर्श हो रहा है वो सारा समुद्र पवित्र है। और तीसरा कारण क्या है? कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके अंदर अनंत बार स्नान किया है, कई बार बेहोश होकर उसमें गिर पड़े थे वो, फिर मछुआरा ने उनको पकड़ के लाया। कई बार भक्तों के संग कीर्तन करते करते पानी में कूदे, कितनी बार भक्तों को लेकर स्नान किया, स्नान करने के लिए गए थे, स्नान किया और आनंद लेकर लौट के आए। तो जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष में चैतन्य महाप्रभु कई बार समुद्र में उतरे, तो समुद्र क्या बन गया? चरणामृत उनका, जगन्नाथ भगवान का आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु का स्नान, शंख क्षेत्र का संग, और कोई बात है ऐसी जिसमें जगन्नाथपुरी के समुद्र का महत्व तो बढ़ गया है बहुत? हरिदास ठाकुर को जब उसका देहांत हो गया तो चैतन्य महाप्रभु खुद उसको अपने हाथ में उठाए समुद्र में गए, और समुद्र में महोदधि महातीर्थ में उनको स्नान कराया उन्होंने, और वहीं पर समाधि बनाया उनका। केवल स्नान नहीं कराया, उनका शरीर वहीं पर समुद्र में, समुद्र के किनारे गड्ढा खोदकर वहीं पर समाधि दिया उनको उन्होंने। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान है वो समुद्र उनका, एक एक जल का कण जो है ना वो परम गति प्राप्त कराने वाला है। दूसरा जलाशय है श्वेत द्वीप, उसमें गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जी, एक ब्राह्मण था, भक्त था भगवान का, वो गंगा जी जाने की बहुत तमन्ना कर रहा था, उसका नाम भूल गया मैं अभी, लेकिन जब वो गंगा जी इच्छा करके एक बार श्वेत द्वीप में उतरा, तो श्वेत द्वीप में उतरते ही, श्वेत द्वीप का मतलब क्या है, बहुत बड़ा विशाल कुंड है वहां पर, एक बहुत विशाल कुंड, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के आंगन में है वो, उनके ही घर का एक भाग है। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? बृहस्पति के अवतार थे वो, देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके अवतार थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने प्रवेश किया था, और वो जगन्नाथपुरी मंदिर के राजगुरु थे, राजा प्रताप रुद्र के राजगुरु थे वो, तो उनके घर में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। जैसे जगन्नाथपुरी में आए, उनके पहले उन घर में उनको लेके गए वो, क्योंकि वो बेहोश अवस्था में पड़े थे जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो उनके घर के सामने ही ये बड़ा विशाल कुंड है। तो जब ये ब्राह्मण भक्त जो है वो उस कुंड में स्नान करने उतरा, तो उस समय उसको मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार में गंगा में स्नान कर रहा हूँ ऐसा अनुभव हुआ, दर्शन भी हुआ अनुभव भी हुआ। तो सपने में भगवान ने कहा कि यहीं पर गंगा जी है, तो गंगा जी वहाँ प्रकट हुई है। और चैतन्य महाप्रभु की माता जो है ना, सच्ची माता, उन्होंने भी वहाँ पर स्नान किया है। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की माता ने स्नान करने के बाद माता को भी गंगा जी में स्नान करने के अनुभव हुए थे। उसकी माता को इच्छा थी कि गंगा सागर में जाके स्नान करें। गंगा सागर कौन सी चीज़ है बताइए? यस अमलप्रिय माता जी बताइए, गंगा सागर कौन सा स्थान है? गंगा देवी जहाँ समुद्र को मिलती है उसको गंगा सागर कहते हैं, और वो बहुत ही पवित्र तीर्थ माना गया है। वहाँ पर कपिल देव ने, कपिल देव का स्थान है वो, वहाँ पर आज भी कपिल देव भगवान का बड़ा मंदिर है। और वहाँ पर बैठकर कपिल देव का देवावती माता जी को दिया हुआ उपदेश का अध्ययन करना बहुत ही अति पवित्र बात है। और लोग गंगा सागर की अलग से यात्रा करते हैं, बहुत विशेष स्थान है वो। वैसे भी जहाँ गोमती नदी समुद्र को मिलती है, जो भी समुद्र को नदी मिलती है वो मिलन का स्थल जो है ना, वो बहुत पवित्र होता है, बहुत पावरफुल होता है वो। तो गंगा सागर विशेष पवित्र है। तो उस गंगा सागर में स्नान करने की सच्ची माता की इच्छा थी, और ये इच्छा करते हुए वो जगन्नाथपुरी में आई थी, क्योंकि जगन्नाथपुरी से वो पास में है, इतना पास में नहीं है लेकिन वहाँ से पास में। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में निवास करती थी, और फिर वो जा नहीं पाई, बुढ़ी हो गई थी। तो उन्होंने फिर श्वेत द्वीप में स्नान करने का निर्णय लिया। तो उनको श्वेत द्वीप में उतरते ही गंगा सागर में स्नान करने का और वहाँ जाने का और वहाँ होने का अनुभव हुआ, और उसकी वजह से उनका और एक नाम पड़ा, गंगा माता गोस्वामिनी। और वहीं पर उनका आश्रम बना, आज भी उसका आश्रम का और एक नाम है, गंगा माता गोस्वामिनी आश्रम। तो गंगा माता गोस्वामिनी, कुछ लोग कहते हैं कि वो सार्वभौम की बेटी थी, लेकिन एक्चुअली वो सच्ची माता देवी है, चैतन्य महाप्रभु की माँ है वो। दूसरा जल का कुंड हो गया श्वेतद्वीप, तीसरा हो गया मार्कंडेय सरोवर। मार्कंडेय सरोवर मार्कंडेयेश्वर महादेव के मंदिर के सामने है। और मार्कंडेय जो मुनि थे वो बहुत ही प्रसिद्ध मुनि हैं। उनको भगवान ने खुद, जब समुद्र के लहरों में ऊपर नीचे हो रहे थे, तो उनको भगवान ने एक पत्ते पर बाल स्वरूप का दर्शन दिया था। और वो बाल स्वरूप का दर्शन ऐसा था कि वो बालक अपना ही अंगूठा, पैर का अंगूठा चूस रहा था, और केवल एक पत्ते पर था वो, एक बरगद के पेड़ के पत्ते पर था उसका शरीर। और इतने महाप्रलय के जल में भी वो डूब नहीं रहे थे, आराम से तैर रहे थे और आराम से अंगूठा चूस रहे थे। जब उस बालक ने लंबा सांस लिया तो मार्कंडेय मुनि इनके नाक में घुस गए और सीधे पेट में चले गए उनके, और पेट में करीब करीब 100 करोड़ वर्ष तक उन्होंने भगवान के पेट के अंदर के अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया, तपस्या किया, भगवानों का अलग अलग देश लोकों का दर्शन किया। फिर वो 100 करोड़ साल के बाद में भगवान ने फिर श्वास छोड़ा तो वो वापस समुद्र में आ गए, लेकिन तब वो शांत हो चुके थे। और शांत होने के बाद में फिर उसको सुरभि गाय ने सुरभि कुंज में आश्रय दिया, अपना दूध पिलाया, स्वस्थ किया उसको, तपस्या सिखाया, भजन सिखाया। उसके बाद में मार्कंडेय मुनि जगन्नाथपुरी में आ गए। तो जगन्नाथपुरी में आ गए तो जगन्नाथपुरी में वो भगवान का बहुत तीव्र ध्यान कर रहे थे, विष्णु का। तो उसका ध्यान देखकर, उसकी तपस्या देखकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए उनके सामने, लेकिन फिर भी एक आंख बंद करके ध्यान ही कर रहे थे। तो शंकर जी उनके मन के अंदर चले गए और मन में दर्शन दिया उनको। तो अचानक वो दर्शन मिला, आँख खोला तो सामने शंकर दर्शन दिए उन्होंने। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने कहा कि हम आपके ध्यान से, तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए, हम आशीर्वाद मांगिए। उन्होंने कहा हमको कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम प्रसन्न हैं बहुत, यहाँ पर संतुष्ट हैं बहुत। फिर भी उन्होंने कहा आपको मांगना होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रेम भक्ति दीजिए भगवान की। तो शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रेम भक्ति का दान दिया उनको। तो उसी शंकर भगवान के प्रेम की वजह से मार्कंडेय मुनि ने वहाँ पर महादेव का लिंग स्थापन किया और वो बने मार्कंडेश्वर महादेव, जो गोपीनाथ मंदिर है उसके बागवा जो बगीचा है यमेश्वर तोता, उसके अंदर ही एरिया में ये मार्कंडेश्वर का मंदिर है और मार्कंडेय मुनि का तपस्थली भी वही है। तो उसके सामने जो कुंड है उसका नाम मार्कंडेश्वर सरोवर है। एक बार मार्कंडेय मुनि को यमराज लेने आए थे तो मार्कंडेय मुनि ने वो शंकर की पिंडी को गले लगाया बहुत जोरदार ऐसा, और उसको यमपाश जो है ना यमपाश बांध कर खींचने लगा तो शंकर जी के लिंग का टुकड़ा निकल गया, लेकिन इन्होंने शंकर का लिंग नहीं छोड़ा, फिर उनको छोड़ दिया यमराज ने। ऐसी भी कहानी आती है। तो यह है मार्कंडेश्वर सरोवर, ये जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे के पास में है। नहीं, अट्टानाला बहुत दूर है, ये जगन्नाथपुरी में है। अट्टानाला तो जगन्नाथपुरी के शुरुआत में आता है, वो तो बहुत दूर है, वहाँ चल के वहाँ से चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो दूर है बहुत। कितने हो गए? चार नहीं तीन हो गए। सागर एक, श्वेतोद्वीप दोन, मार्कंडेश्वर, हाँ श्वेत गंगा नाम है उसका, वे द्वीप नहीं, श्वेत गंगा नाम है उसका, श्वेत गंगा, और तीसरा क्या नाम है? मार्कंडेश्वर। तो चौथा है नरेंद्र सरोवर, और नरेंद्र सरोवर भी इंद्रदुम्न राजा ने बनाया था। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक राजा था बीच में, इंद्रदुम्न का वंशज था वो, उसने जगन्नाथ भगवान के उत्सव मूर्ति के लिए गर्मी के समय पर ठंडक में नौका विहार करने के लिए इसको बनाया। तो आज भी जब भी जगन्नाथपुरी में वसंत पंचमी आती है ना, नहीं अक्षय तृतीया वैशाख में आती है ना, अक्षय वैशाख शुद्ध तृतीया, बहुत भयंकर गर्मी होती है उस समय, तो उस समय 21 दिन के लिए भगवान को चंदन लगाते हैं, चंदन लागी, चंदन यात्रा। तो वो चंदन यात्रा के चंदन लगते ही पहले दिन से ही शाम को 4 बजे के बाद में मदन मोहन जी, जो जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह है, उत्सव मूर्ति है, वो और दो विग्रह हैं, उसके नाम नहीं याद आ रहे मुझे, दो विग्रह हैं और जगन्नाथ की उत्सव मूर्ति मदन मोहन जी है, उनको बड़े धूमधाम से गाते बजाते उधर लेके आते हैं और नौका में सवार करते हैं और फिर नौका विहार करते हैं पूरे शाम तक, और कभी कभी स्नान भी कराते हैं उनको। उसी सरोवर में चैतन्य महाप्रभु ने, जब चाह महाप्रभु वहाँ पर थे तो वो भगवान का नौका विहार देखने गए थे एक बार भक्तों के साथ में, और जब नौका विहार देखा तो इतना प्रेरणा हुआ उनको कि सीधा जल में कूद पड़े वो, और जल में कूद पड़े तो सारे भक्त लोग भी जल में कूद पड़े, और उन्हें बहुत देर तक जल में बहुत आनंद लिया, पानी उछालना यहाँ वहाँ खेलना। तो नरेंद्र सरोवर बहुत पवित्र स्थान है, महाप्रभु का स्नान का स्थली है, कई बार भक्तों के साथ स्नान किया उन्होंने वहाँ पर, और जगन्नाथ भगवान का नौका विहार स्थली है वो। चार हो गए ना, और पांचवा है इंद्रदुम्न सरोवर। इंद्रदुम्न सरोवर में भी चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े बुजुर्ग उम्र वाले भक्तों के साथ में जल क्रीड़ा किया था, पानी उछालना वगैरह, ऐसे बच्चों जैसा खेला था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सबसे बुजुर्ग थे उस समय, परमानंद भट्टाचार्य, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग ने पानी में उतर के 1-to-1 फाइट शुरू किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर, ऐसे फाइटिंग करने लगे पानी में, और उनको खेलते हुए देखकर महाप्रभु ने कहा, देखो देखो कितने बड़े पंडित है ये, राजगुरु, वेदों के प्रकांड पंडित है, देखो बच्चे बनकर खेल रहे हैं। तो क्या बताते ऐसे बोलकर कि जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं वो, लेकिन जैसे ही कोई पंडित ज्ञानी भक्त बन जाता है तो वो बच्चे जैसा बन जाता है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका देखने का तरीका, बोलने का तरीका, वो बालक जैसा निष्पाप हो जाता है, वो प्रकांड पांडित्य भूल जाता है वो। तो इतना बड़ा वेद का प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे ही भक्त बन गया भगवान का, भगवान ने भक्त बनाया उसको, भक्त बन गया तो एकदम बालक जैसे बनकर बालकों की तरह खेल रहे थे वो। तो महाप्रभु ने ऐसा टीकात्मक भाष्य किया, लेकिन बड़ा हृदय से आनंद आया उनको, उनको सब लोगों को देखकर, क्योंकि भगवान ये चाहते नहीं कि हम लोग प्रकांड पंडित बनके गंभीर बन जाएं, भगवान ये चाहते हैं कि हम स्वीट बन जाएं, स्वीट मधुर बन जाएं, बहुत निष्पाप बन जाएं, निरागस बन जाएं, और बच्चों जैसा उनका कोमल हृदय बन जाएं, ये वो चाहते हैं हमेशा। तो ये 5 तीर्थ हो गए ना, तो 5 तीर्थों का दर्शन करना, आचमन करना, और 5 शिव का दर्शन करना। शिव जी का 5 शिव जी हैं, एक है कपाल मोचन शिव जी, एक गणेश्वर शिव जी, एक नीलकंठेश्वर शिव जी और दो शिव जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहे, एक लोकनाथ शिव जी, लोकनाथ, एक कपाल मोचन, जनेश्वर, लोकनाथ, नीलकंठेश्वर और एक शिव जी है बीच में, मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, ये पांच महादेव है। और भी बहुत सारे महादेव हैं, कपोतेश्वर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव, बहुत सारे महादेव हैं, जगन्नाथपुरी के सब रक्षक हैं ये। तो ये पांच शिव जी और पांच सरोवर ये दर्शन करेंगे, और नरसिंह भगवान दर्शन करेंगे और जगन्नाथ जी का करेंगे, तो आपका जगन्नाथपुरी का दर्शन पूर्ण हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबके दर्शन किए हैं, सबके दर्शन किए। तो चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के पहले हम गुंडीचा मंदिर साफ करेंगे। तो इंद्रद्युम्न जल का, सरोवर का जल लेकर उन्होंने साफ किया था। और एक सुंदर नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर का, वो है भांडा, भांडा भांडा भंग स्थली। मतलब क्या कि मटके में जल लेकर वो भाग जोड़ी कर रहे थे आपके, लेकिन जल्दी जल्दी में उनके कई लोगों के मटके टकराए और सबके मटके वहां टूट गए। तो जिस जगह पर गुंडीचा मंदिर को साफ करने के बहाने कई लोगों के मटके टकराए और टूट गए, इसलिए उसका स्थान का नाम पड़ा कुंभ, क्या नाम थे उसका, कुंभ भंग स्थली, ऐसा कुछ नाम है उसका, बहुत सुंदर। तो वहां से महाप्रभु ने जल जल मंगवाया और वहां पर उनको ऐसा चमकाया भगवान ने मंदिर, सब लोगों ने धूल बेला निकाला, उसके बाद में जल से साफ किया, उसके बाद पीताम्बर से भगवान ने साफ किया, भगवान का वेदी पीताम्बर, वो इतना गौरवशाली वस्त्र है भगवान का, वो उससे लेकर भगवान ने वो वेदी साफ किया जहाँ पर जगन्नाथ जी अगले दिन आने वाले थे। अपने हाथ से मटके से पानी दीवार पे फेंका, वो पूरा वेदी साफ किया भगवान ने। उसके बाद में अगले दिन में वो गुंडीचा मंदिर स्वच्छ करने के बाद में वो जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के लिए बाहर आए। तो गुंडीचा मंदिर का जो साफ करने का काम है ना, वो बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। हम लोग क्या बोलते हैं रोज प्रार्थना में, क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम, बोलो, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं, विद्यावधूजीवनं, आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं, पूर्णामृतास्वादनं, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम है, ये इसका उन्होंने एक प्रतीक दिखाया, गुंडीचा मार्जन को साफ, गुंडीचा मंदिर को साफ करके। उन्होंने कहा कि गुंडीचा मंदिर में भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक वो स्वच्छ नहीं होगा। वैसे हमारे हृदय में भी भगवान, भगवान का स्थान है वो, लेकिन गंदे हृदय में भगवान नहीं आ सकते हैं, ना विराजमान हो सकते हैं। तो उन्होंने गुंडीचा मंदिर को अपने हृदय के समान माना और उसको पूरा स्वच्छ कर दिया। स्वच्छ करते ही भगवान के आने के और बैठने के योग्य जगह बन गई वो। इसलिए उन्होंने उस पूरे प्रक्रिया में किसी को कुछ बोलने को नहीं दिया, खाली हरी 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 इतना ही बोलना था सबको। और सारे बोलने की जितनी भाषाएं थी, जो जो बताना था वो हरी हरी में पूरा हो गया उनका। बाल्टी लाओ फिर हरी हरी, कपड़ा लाओ हरी हरी, पानी लाओ हरी हरी, ले जाओ हरी हरी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवान नाम का उच्चारण करके हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, इसलिए कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है वो भगवान के नाम का जप करने से स्वच्छ हो जाता है। और सब लोगों को लगाया उसने, उन्होंने एकाग्र होकर लगाया, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं उसके अंदर। और स्वयं भी सबसे अधिक कचरा, सबसे अधिक जल का सफाई उन्होंने किया और एक आदर्श स्थापन किया, जिसके बाद में आज तक जगन्नाथपुरी में हर साल में आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा के दिन गुंडीचा का मंदिर साफ किया जाता है। सब भक्त लोग वहां आते हैं और अपना जल देते हैं इसी भाव से कि एक तो भगवान के आने की जगह स्वच्छ हो जाए और हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाए, ताकि रथ यात्रा में खींचकर भगवान लेके आएंगे तो वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, जो हृदय गुंडीचा मंदिर की तरह है। फिर नेक्स्ट जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के भगवान रथ यात्रा के सामने आए, तो भगवान पंडित विजय में बाहर आए। फिर बाहर आने के बाद में उनको रथ पर सवार किया गया। भगवान बड़े नशे में चूर थे उस समय, हाँ महाभाव नशे में थे कि मैं वृंदावन जाऊंगा। वो रहस्यमय बात है, बहुत बड़ी रहस्यमय बात है कि उनको द्वारका से, द्वारका के भाव में रहते हैं ना वो, उधर द्वारका के ऐश्वर्य भाव में जगन्नाथपुरी के मंदिर में रहते हैं और वृंदावन के लिए तड़पते रहते हैं और कब वृंदावन जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा, इसी भाव में रहते हैं। तो उस दिन साल भर का इंतजार पूरा होता है ना कि आज जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी बोलेंगे 7 दिन के बाद जाएंगे तो 7 दिन की तक उत्सुकता होगी, लेकिन 7 के 6 दिन होंगे तो उत्सुकता बढ़ेगी, 6 के 4 दिन होंगे उत्सुकता और बढ़ेगी, 6 के 2 हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे तो 2 दिन में जाना है तो और उत्सुकता बढ़ेगी, और 2 दिन के आज जाना है तो और उत्सुकता बढ़ेगी, और आज अभी अभी जाना है तो और कितना उत्सुकता बढ़ेगी। अभी निकल गया मैं तो बड़े भाव में आ जाते हो, और नशे में झूमते 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 रथ में सवार हो जाते हैं। सब जगह चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, सब दूर से महाप्रभु का भाव देख रहे हैं, बीच में नशे में भगवान ऐसे भाव में रुक जाते हैं तो सब लोग मुरली निकालते हैं अपनी, और मुरली घुमा घुमा के बोलते हैं, ए कालिया रुकने का समय नहीं है, जगन्नाथपुरी मतलब वृंदावन जाना है, यहाँ क्यों रुके हुए, उठो उठो करके उनको उठाते हैं, मुरली दिखाकर वृंदावन की याद दिलाते हैं उनको। ये द्वारका में मुरली नहीं ना उनकी, द्वारका में मुरली मोर पंकज नहीं है, तो वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन भाव, वृंदावन के भाव में जगन्नाथपुरी से निकलकर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, सुंदराचल जा रहे हैं, नव वृंदावन जा रहे हैं, गुप्त वृंदावन जा रहे हैं, तो वो रुकने का समय नहीं है अभी, तो मुरली दिखाकर उनको प्रेरित करते हैं और जगाते हैं भाव से, और फिर वो जाते हैं ऊपर चढ़ के और बैठते रथ में, और फिर रथ यात्रा आरंभ होती है। तो रथ यात्रा आरंभ होते ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनके भक्त जो बंगाल से आए थे ना, उनमें की 4 पार्टियां बनाई उन्होंने, उनकी 4 पार्टियां बनाई, हर एक पार्टी में 2 गाने वाले, 2 मृदंग वाले और 7 गाने वाले और 7 नाचने वाले, 2 मृदंग वाले और बाकी सब जो गाने वाले वो करताल बजा रहे हैं, तो 2 गाने वाले में से 1 प्रमुख गायक, 1 रिपीट गायक और 2 मृदंग वाले और 7 रिपीटर्स पक्के, मतलब जो एक गाएगा तो 7 लोग रिपीट करेंगे उसको, इस तरह से 4 बनाए उन्होंने ग्रुप, और गिने चुने गायक, गिने चुने मृदंग वाले, गिने चुने करताल वाले, गिने चुने नाचने वाले लीडर भी बनाए उन्होंने, और जगन्नाथ के रथ के सामने 4 ग्रुप ऐसे स्थित कर दिए। फिर 3 गांव से लोग आए थे, कुलीन ग्राम, सप्त ग्राम और दूर दूर से 3 गांव से आए थे लोग, तो 3 गांव के उन्होंने 3 और पार्टी बनाई, उसमें भी 1-1 गाने वाला, नाचने वाला, बजाने वाले सब भेज दिए उन्होंने, कहते 35 मृदंग वाले थे उसमें, ऐसे वर्णन आता है। और फिर ये जो 3 थे, 1 रथ के राइट साइड में, 4 सामने, 1 राइट साइड में, 1 रथ के लेफ्ट साइड में और 1 सबके पीछे, ऐसे 7 उन्होंने ग्रुप बनाए और फिर कीर्तन शुरू किया। जैसे कीर्तन शुरू किया ना, सब लोग भाव विभोर हो गए, किसी को समझाने क्या हो रहा है, कुछ ही देर में सब लोग ऐसे दिव्य भाव में चले गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने नाच करना शुरू कर दिया, तो सबको लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने 7 ग्रुप को छोड़कर, 6 ग्रुप को छोड़कर मेरे ही ग्रुप में नृत्य कर रहे हो, ऐसा उन्होंने आनंद का अनुभव किया। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु 7ों ग्रुप में 7 रूप में नृत्य कर रहे थे, लेकिन वो जो ग्रुप में नृत्य कर रहे थे वो इतने भाव में मग्न हो गए थे, उनको लगा था कि हमारे ही ग्रुप में नाच कर रहे हैं, बाकी ग्रुप में देखने को समय किसको है, अपने ग्रुप में इतना आनंद आ रहा है तो कौन क्या कर रहा है, किसी को भान नहीं था उसका। लेकिन ये भाव मन में आ रहा था कि हम लोग कितने कितने भाग्यशाली है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं। तो ये 7 ग्रुप में, 7 रूप में वो नृत्य कर रहे थे, ये केवल 3 लोगों को नजर आ रहा था। वो कौन थे, सबको पता होना जरूरी है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो है ना बहुत दिव्य चरित्र है, ये आपको याद रहेगा तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा आपका। स्वरूप दामोदर जो ललिता के अवतार थे, ललिता के अवतार थे, और रामानंद राय नहीं थे उसके अंदर, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये, नहीं तो वो नहीं तो ए, नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है वो, नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य और तीसरे थे राजा प्रताप रुद्र, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को मिलने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि मैं राजा से नहीं मिलता, धनी आदमी से नहीं मिलता, ऐश्वर्य वाले से नहीं मिलता। दोबारा प्रस्ताव लेके आओगे ना, जगन्नाथपुरी छोड़ के जाऊंगा, बार बार नहीं पूछना मुझे इसके बारे में, मुझे नहीं मिलना है इसको। परीक्षा ले रहे थे उसकी। तो रामानंद राय ने, सॉरी प्रभानंद राय उनके अंडर काम करने वाले गवर्नर थे, वो राजा था, और काबूर नाम की जगह थी गोदावरी तट की, वहां का वो गवर्नर था राज्यपाल। तो महाप्रभु ने क्या बोला, छोड़ दो ये काम, मेरे साथ चलो। महाप्रभु उसको लेकर आए वहां से, और ये बात राजा को पता चली कि मेरे एक एम्प्लॉय यानी मेरा अंडर जो काम करते अधिकारी है उस पर कृपा हो गई है महाप्रभु की, उसको स्वयं जाकर मिले। मैं उनको मिलना चाहता तो मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन उसको जाकर स्वयं मिल के आए, और स्वयं मिलकर आदेश दिया, अपने साथ में लेकर जगन्नाथपुरी आए। तो अगर आप राजा होते तो आप क्या बोलते, दंड देते क्यों काम छोड़ के आए, चलो काम पे जाओ, पगार नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मन में दुख है ना कि आपको कृपा हुई मुझे कृपा नहीं हुई। लेकिन राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि तुम इतने भाग्यशाली हो, मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनाया, आदेश देकर यहां बुला के लेके आया। आपको मैं जिंदगी भर राज्यपाल के पद की तनख्वाह दूंगा, और आप बिल्कुल काम नहीं करना राज्यपाल का, महाप्रभु जी की सेवा में रहना। बताओ कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा दिल होना चाहिए आदमी का, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, हाँ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अरे तुम मेरा नौकर है, मैं तुम पगार देता हूँ, तुम पर भगवान की कृपा हो गई, मुझे भगवान डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे हम लोग द्वेष के कारण, है ना, वो सहन नहीं होगा उसके बारे में। ऐसा मुझे अभी भी गर्व होता है इस बात को बताने में। उन्हें कहा कि आपको पूरी तनख्वाह दूंगा, जिंदगी भर तनख्वाह दूंगा, आप रहो उनकी सेवा में। एक ये खबर जब चैतन्य महाप्रभु सुनाई पड़ी तो उनका हृदय थोड़ा कोमल हो गया इसके बारे में, राजा प्रताप रुद्र के बारे में हृदय कोमल हो गया उनका। उसके बाद में रथ यात्रा के पहले सारे भक्त लोग बंगाल से आए जगन्नाथपुरी में, तो बंगाल से आते ही राजा प्रताप रुद्र ने अपने खर्चे से उन सबका रहने का और भोजन का इंतजाम किया, सबका मतलब क्षेम कुशल देखा, क्या सब लोग स्वस्थ है, अच्छी तरह से आराम से रह रहे ना, सबकी व्यवस्था किया उन्होंने, बड़े बड़े अधिकारियों को लगा दिया। तो और खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु, वो खबर ले रहे थे उनकी, लेकिन बता नहीं, दिखा नहीं रहे थे क्या उनको लग रहा है। और चूंकि उन्होंने भाई भगवान के भक्तों का सेवा किया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वैष्णव सेवा की वजह से राजा प्रताप रुद्र को सात रूप में नृत्य करने वाले महाप्रभु दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि हवा से दिखते ना पक्षी, कैसे देखता है ऊपर से, वैसे उसको सात रूप एक साथ दिख रहे थे नृत्य करते हुए। बाकी सार्वभौम को दिखाई पड़ रहे थे और स्वरूप दामोदर को दिखाई पड़ रहे थे। सात रूप में जब नृत्य कर रहे थे ना, तो महाप्रभु चैतन्य के आंखों से अश्रु बह रहे थे, और ऐसे शास्त्र में लिखा गया है कि जब भगवान के आंखों से आंसू बहते हैं तो वो गालों पर नहीं बहते हैं, वो पिचकारी की तरह बाहर निकलते हैं ऐसे। मतलब अगर मैं वैसे रोऊंगा तो आप सब लोग भीग जाएंगे, क्योंकि तो दोनों आंखें से पिचकारी निकलेगी, सब सामने वाले सब बिक जाएंगे। ऐसे महाप्रभु ने जिस जिस ग्रुप में नृत्य किया उसमें जहां जहां गोल गोल घूमे वो सब लोग भीग गए महाप्रभु के अश्रु से, और उनके अश्रु का स्पर्श होते ही और उनको प्रेम और भक्ति का अनुभव हुआ, और ऐसे सात रूपों का दर्शन उनको हुआ। तो प्रताप रुद्र भाव विभोर होकर देख रहे थे, इतना अलौकिक भाग्य था उनका। उनके सामने उनका एक नौकर था, राजा खड़ा है तो उसके, और एक बात भगवान को बड़ी अच्छी लगी, उस रथ यात्रा में वो केवल सूती धोती और उत्तरीय पहनकर आए थे, अंगवस्त्रम, राज वस्त्र पहनकर नहीं आए थे, वीआईपी बनकर नहीं आए थे वो। एक और कारण था महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब रथ पे चढ़े ना भगवान, तो राजा ने पूजा किया भगवान का और सीधे उतर के पब्लिक के सामने रास्ता साफ किया झाड़ू से, तभी भी महाप्रभु देख रहे थे, वो बड़े प्रसन्न हो गए थे। नंबर वन प्रसन्न वहां हो गए, उसके पहले भक्तों का सेवा किया था तब प्रसन्न हो गए थे, उसके पहले रामानंद राय को बोला था कि फुल पगार। ऐसे एक एक करके उन्होंने वैष्णवों की सेवा करके नम्रता, झाड़ू मारने की नम्रता, वैष्णवों की सेवा, और ईर्ष्या नहीं करना, बिना ईर्ष्या का स्वभाव, निर्दोष निर्द्वेष स्वभाव। तो फिर भगवान और नम्र बनकर आए थे या कश्चित बनकर आए थे, बिना कोई अराज वस्त्र अलंकार मुकुट पहनकर नहीं आए थे, सूती धोती और ऊपर एक अंगवस्त्र पहनकर, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आए थे। फिर भी राजा थे ना वो, तो एक सेवक था उनके सामने, कोई धक्का ना लगा दे उनको, अभी कैसा भीड़ में कैसा है ना, कौन देखता है किसी को राजा कौन है, ऊपर से कपड़ा भी पहन के नहीं आया राजा का। तो बार बार लोग आगे भी जो रहे थे ना, तो उनका सेवक उनको रोक रहा था। तो सेवक के आगे कौन था? यस श्री जी प्रिया, सेवक के आगे कौन था? श्रीवास पंडित स्वयं थे, मग्न होकर नृत्य देख रहे थे। वो बार बार आगे पीछे हो रहे थे, तो फिर उसको बाजू करते थे ये नौकर, क्योंकि तो राजा को देखना ना पीछे से, उसको पता नहीं ये कौन है। राजा अपना मालिक खड़ा है पीछे, तो इसलिए वो रास्ता बना रहा था उसको देखने के लिए। तो एक बार उसको बाजू में किया, तो श्रीवास पंडित भाव में थे, बहुत ऐसे गुस्से से पीछे मुड़ के देखा। फिर दूसरी बार बीच में आए, दूसरी बाजू बार किया, तो और एक बार घूम के देखा गुस्से से नौकर को। तीसरी बार जब उसको बाजू किया ना, तो श्रीवास ठाकुर ने आनंद में भाव विभोर होते ना, भाव विभोर हुए थे वो, ऐसा घुमा और एक लाफा लगाया नौकर को। इतने भाव में थे वो, ऐसा लाफा लगाया जोर से, तो वो नौकर को गुस्सा ही आ रहा था। उतने में राजा प्रताप रुद्र ने उसको रोका, कुछ नाम था उसका, जय पर कुछ नाम था, रुका, बोला गुस्सा मत करो, तुम्हारा ये परम भाग्य है कि इतने परम भक्त जो श्रीवास ठाकुर है ना, उनके हाथ का प्रसाद मिला है आज आपको। आपको मारने के भाव मत समझना, आप पर बड़ी कृपा हो गई आज ये, आप बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे भक्त ने आपको चाटा मारा है। फिर उसके बाद में अचानक सबके आंखों के सामने सात ग्रुप एक ग्रुप हो गया, और सात चैतन्य महाप्रभु ज्वाइन हो गए और एक बने। और फिर उन्होंने बहुत बड़ा नृत्य किया जगन्नाथ के सामने। कहते जगन्नाथ जी रुक गए उनका नृत्य देखकर, रथ चलना बंद हो गया। और फिर जब रथ बहुत देर नृत्य किया, तो जगन्नाथ जी के सामने फिर चैतन्य महाप्रभु रुक गए, और उन्होंने फिर जगन्नाथ का रथ भी रुक गया। तो उन्होंने ना राधा रानी के भाव से जगन्नाथ के साथ बात करना शुरू किया। क्या बताएं, पूरा बड़ा अध्याय है उसके अंदर, क्या बात किया उन्होंने जगन्नाथ से। इन शॉर्ट, अब तक कहाँ थे आप, मैं आपके इंतजार में थी, अब दर्शन दे रहे हो आप, कब से व्याकुल हूँ आपके लिए, ऐसे मैंने उन्होंने वृंदावन का संवाद किया। जैसे वृंदावन में भगवान लौट के आ रहे हैं ना बहुत दिनों के बाद में, अब वृंदावन वासी सब व्याकुल है, तो क्या बोलेंगे जब भगवान बहुत देर के बाद वृंदावन आएंगे, तो इतने दिन कहाँ थे आप, आपके लिए हम व्याकुल थे, तड़प रहे थे, आज आए हो आप दर्शन देके, आज हमारे नेत्रों को जीवन प्राप्त हो गया है, हमारे जीवन को जीवन प्राप्त हो गया है, ऐसे बहुत लंबा संवाद है, बहुत सुंदर संवाद। उसके बाद में वो रथ यात्रा जो है ना, वो बालागंडी पहुंच गई। बालागंडी में एक ऑफिशियल हॉल्ट होता है, और वहां पर अर्धासनी देवी के मंदिर के द्वारा अर्धासनी देवी की तरफ से बड़े बड़े भोग लगते हैं, ऑफिशियल हॉल्ट है उनका। तो राजा ने कहा, राजा ने नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य भक्तों ने कहा कि भगवान आप बहुत थक गए, मतलब इतना पसीना भाया भगवान ने, कुछ तो अश्रुओं से भीगे हुए थे, कुछ पसीने से भीगे हुए थे, बहुत थक गए थे। तो भक्तों ने उनको कहा कि आप जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में जाके आराम करना, तब तक ये भोग लगेगा तब तक आपको बुलाएंगे वापस। तो जब वो जाके जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में सो गए, आंख बंद करके सो गए, ना थके हुए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत बताया, राजा महाराज तुरंत जाओ, उनके चरण दबाओ, अभी वो आंख बंद करके सो रहे हैं। तो राजा महाराज गए भाग के प्रताप रुद्र जी, और चरण दबाना आरंभ किया। और चरण दबाते समय जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रथी, ऐसे गोपी गीत गाना शुरू किया। इतना सुंदर गाया उन्होंने दिल से कि महाप्रभु ने आंख नहीं खोला, बड़े प्रसन्न हो गए वो, और आंख बंद करके बोला और गाओ और आगे गाओ। तो फिर वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि भृन्नति ते भूरिदा जना। जब ये गाया ना उन्होंने, ते भूरिदा जना, यानी कि वो महान भक्त है, वो बड़े उदार हृदय होते हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, बड़े उदार हृदय होते हैं, बड़े उन्हीं को भूरी भूरी जन कहा गया है। भूरी जन, भूरी भूरी यानी गौरवशाली है भगवान के भक्त वो। तो उन्होंने आंख खोल के उठे, वो बोले कौन हो आप, ऐसे उनको पुकारा और ऐसा गले लगाया उनको कि अपने आंखों के अश्रुओं से उनको नहलाया उन्होंने और पूछा बताओ आप कौन हो, बताओ आप कौन हो। तो उन्होंने क्या बोला, मैं महाराजा धीराज गजपति महाराज प्रताप रुद्र हूं, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं आपके भक्तों के भक्तों का दास हूं, आई एम ओनली सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट्स। वो देखकर इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु, इतने प्रसन्न हो गए, बार बार गले लगाए उनको और कहते हैं कि मैं आपके भक्तों का दासों का दास हूं और केवल आपकी सेवा चाहता हूं और आपके भक्तों की सेवा चाहता हूं। कोई राजा का परिचय नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि मेरा जो एम्प्लॉई है उसको भगवान अपना रहे हैं और मुझे राजा को नहीं अपना रहे हैं। ये राजा का पद ही सबसे बड़ा क्या कहते हैं इसमें अवरोध है, बाधा है, मैं उसी को त्याग करना चाहूँ, मुझे राजा नहीं बनना है। अगर मेरे राजा होने की वजह से भगवान मुझे नहीं मिल रहे तो धिक्कार है राज के पद पर, राजा के पद पर राजा होने पर धिक्कार है, मुझे नहीं चाहिए वो सब। तब से ही विरक्त हो गए थे वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्त करनी है और भगवान केवल मैं राजा हूं इसलिए प्राप्त नहीं हो रहे, तो मतलब राजा होना ही मेरा सबसे बड़ा अवगुण है। तभी राजा का जो था ना अहंकार, कुछ समझो अहंकार समझो, अभिमान समझो, पद समझो, उसी समय त्याग दिया था। इतनी सी भी आसक्ति उनको राजा के पद पर नहीं थी, इसलिए उन्होंने जब परिचय पूछा गया तो राजा का परिचय नहीं दिया, क्योंकि उस परिचय को उन्होंने छोड़ दिया था बहुत पहले, ये त्याग कर दिया था उसका। तब जाकर भगवान ने पूरी कृपा कर दी उसके ऊपर, ऐसे महान राजा थे वो, ऐसा चरित्र है उनका प्रताप रुद्र का। देखो इतना महान राजा होने पर भी अपने को दासों का दास मानता है वो, और डायलॉग नहीं मार रहे वो, किसी ने लिखा हुआ दिल से बोल रहे हैं। अभी उसको मौका है 1-to-1 भगवान सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, गले लगाया उन्होंने, सब प्रेमा भक्ति उस पर हृदय में स्थापित कर दिया उन्होंने भगवान ने उनके, ऐसे गौरवशाली राजा थे वो। फिर वहां ने भगवान ने थोड़ा सा भोजन किया, वापस भगवान रथ यात्रा में गए। तो ऐसे वर्णन आता है कि जैसा भगवान नाच करते थे प्रेम से एकदम, जगन्नाथ जी रुक जाते थे, फिर कितना भी धक्का लगाओ चलता ही नहीं रथ, तो ये पीछे जाते थे और नाचते थे पीछे से, फिर उनको ना देखते हुए फिर जगन्नाथ जी वापस चलते थे, फिर उनको चलते हुए देखकर वो आगे आते थे नाचते थे, फिर रथ यात्रा रुक जाती थी, ऐसा था। और एक जगह पर मैं शायद थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं, लेकिन जब वो गए ना पहली बार उठकर इनको आलिंगन देकर चले गए, तो तभी जाकर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा वहां रुक गई थी और राजा की तरफ से मंत्रियों ने हाथी घोड़े मल्ल लगा दिए थे उसको खींचने के लिए, लेकिन वो रथ टस से मस नहीं हुआ। तो महाप्रभु जी को बुलाया गया, महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो महाप्रभु जाके अपना सर जो है ना रथ के पीछे से जाके सर खाली लगाया रथ को, और तुरंत रथ चालू हो गया। और उसके बाद जितनी बार महाप्रभु ने नृत्य किया रथ रुकता गया, जब पीछे गए रथ शुरू होता गया, फिर आगे गए नृत्य किया तो रथ रुकता गया, ऐसे करते 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 फिर पहुंच गया रथ। बहुत जबरदस्त रथ यात्रा हुई, वो अद्भुत रथ यात्रा हुई। और फिर उसके बाद में जब भगवान पहुंचे तो एक रात रुके, फिर अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु दोबारा वहां पर आए तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उतार कर गुंडीचा के मंदिर में प्रवेश किया गया, तो चैतन्य महाप्रभु उनके बगल में चलते 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 गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया भगवान ने भगवान को उन्होंने। इस तरह से जगन्नाथपुरी की प्रथम रथ यात्रा संपन्न हुई, जगन्नाथ भगवान के जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का सहयोग यानी कि सहभाग कह सकते हैं उसको। और उसमें इसका सार जो है ना मेन, वो उस संवाद में है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कि कैसे एक कृष्ण भगवान दूसरे कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं, एक कृष्ण भगवान भक्त के भाव में बात कर रहे हैं राजा रानी के भाव में, और एक कृष्ण भगवान स्वयं जगदीश कृष्ण के रूप में खड़े हैं, मानो राधा रानी और कृष्ण का संवाद हो रहा है। बहुत रहस्यमय बात है ये, बहुत रहस्यमय। उसका पूरा श्लोक के बाद श्लोक के बाद श्लोक है जो महाप्रभु बोलते जा रहे हैं और जगन्नाथ जी सुनते जा रहे हैं और रो रहे हैं जगन्नाथ जी उनके बातों से। राधा रानी इतनी व्याकुल होकर बात कर रही है तो जगन्नाथ का भी हृदय गदगद हो जाता है, जमीन पर घुटने पर टेक कर बैठकर ऐसे हाथ उठाकर पुकार रहे हैं भगवान को, प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कभी चले ही नहीं रथ यात्रा में, केवल नृत्य ही करते रहे उसी भाव में। आज भक्तगण भी नृत्य करते करते उनको पहुंचाते हैं ऊपर। तो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा जो उत्सव है ना, बहुत ही अति दिव्य उत्सव है, क्योंकि दुनिया में कोई भी भगवान ऐसे नहीं है जो एक बार स्थापन करने के बाद में अपना स्थापन किया हुआ स्थान छोड़ते हैं। एक ही ऐसे भगवान है। जगन्नाथपुरी में भी जब बहुत सारे उत्सव होते हैं तो उत्सव मूर्ति जाती है, मदन मोहन जी जाते हैं, लेकिन साल में एक बार जगन्नाथ जी स्वयं अपना वेदी छोड़कर रथ में विराजमान होकर निकलते हैं। और साल भर में दर्शन करने को किसी को, बाकी हिंदू इतर लोगों को परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर आके सबको दर्शन देते हैं वो, फिरंगियों को, विदेशियों को, अलग जातियों को, धर्मों को, सबको दर्शन देते हैं, सब पर कृपा करते हैं। जो जो नहीं कृपा कर पाए उनको सब पर कृपा कर देते हैं, जो जो आए उन पर कृपा बरसा देते हैं। कहीं और जगह रहते जाके विस्तार स्थापन की हुई मूर्ति जो है ना, कहीं और जगह जाके रहती है, फिर वापस रथ में बैठकर वापस आती है और फिर अपने मंदिर में विराजमान, फिर अगले साल, हर साल। ऐसा अद्भुत कृपा आज तक किसी ने किया नहीं है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि सब भगवानों में से सबसे दयालु भगवान जगन्नाथ है, क्योंकि इतनी कृपा अपना जगह छोड़कर कोई करते नहीं है, वो जगन्नाथ भगवान करते। उनके धाम में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है बताइए? जगन्नाथ का प्रसाद, उसकी इतनी महिमा है प्रसाद की, वो प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद पाकर ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है उनका दर्शन। क्योंकि नारद मुनि ने वरदान मांगा था ना कि आपको इस बेहोश हालात में देखकर मेरे मन में अद्भुत प्रेम का आविष्कार हुआ, जो पहले कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं हुआ था। प्रेम तो बहुत है मेरे मन में आपके लिए, लेकिन इतना प्रेम होने पर भी इतना अद्भुत आविष्कार, विचित्र प्रकार का आविष्कार पहली बार हुआ। और इतना प्रेम अगर अद्भुत तरीके से उमड़ रहा है मेरे हृदय में, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी रूप में दर्शन देंगे भौतिक दुनिया में, ताकि पापी हो या पुण्यवान हो या भक्त हो या सिद्ध हो, जो भी हो आएगा, उसके मन में भी ऐसा अद्भुत प्रेम का आविष्कार होगा आपको देखकर, और वहीं से वो मुक्त हो जाएगा। तो उसी उसी रूप में जगन्नाथ जी भगवान वहां पर प्रकट है। एक तरह से आप सोचेंगे ना, मैं सुबह सोच रहा था आज बैठकर, कि वो एक ही ऐसे भगवान है जो बेहोश रूप में है, बेहोश रूप में उनको स्थापन किया गया है, बेहोश भाव में उनको वहां पर खड़ा कर दिया है। वो महाभाव जो है ना, वो बेहोशी का ही भाव है पूरा। उस प्रेम के आवेश में महाप्रभु जी, जगन्नाथ भगवान बड़े बेहोशी हो गए थे, बेहोश होकर गिर गए थे, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें खुली है, बड़ी बड़ी मुस्कान है, लाखों में लालिमा है पूरी तरह से, हाथ पैर अंदर चले गए हैं और उसमें बेहोश अवस्था में पड़े थे। तो नारद मुनि ने उसी उसी का वरदान मांगा था कि इसी रूप में आप देखोगे, उसी रूप में वहां खड़े है वो, एक तरफ से होश में है, एक तरफ से बेहोश भी है। ऐसा अद्भुत भगवान का कोई विग्रह दुनिया में कोई नहीं है, उसको महाभाव कहते हैं। महाभाव में 8 अलग अलग प्रकार के प्रेम भावों का मिलन होता है, रति, प्रेम, स्नेह, मान, अनुराग, राग, अनुराग, ऐसे 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग भाव होते हैं। वो सारे 8 प्रकार के भाव जो है वो मिलन होकर महाभाव बनता है, और वो केवल जगन्नाथ जी, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु, केवल 3 व्यक्तियों के पास में है, और किसी के पास ना गोपी के पास है, ना ग्वाल बाल के पास है, ना ब्रिजवासियों के पास है। उनके पास अनंत प्रेम है, लेकिन महाभाव अलग होता है। तो जगन्नाथ जी वो महाभाव का अनुभव करते करते एक तरह से बेहोश हालत में खड़े हैं, प्रेम का रूप का दर्शन दे रहे हैं, प्रेम रूप का। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो ऐसे अद्भुत भगवान जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा मनाइए और उसमें दिल से भाग लीजिए। और ये कथा क्यों सुनते हैं हम लोग, इसका कारण ये है कि ये सब याद करते करते रथ का दर्शन करना चाहिए, कि ये वही भगवान है वो, इनके सामने गौरांग महाप्रभु नृत्य किया था 7 रूप में, वही भगवान है वो नाचते हुए पिचकारी की तरह अश्रु निकल रहे थे उनके, उसी भाव से हमको नाचना चाहिए, उसी भाव से उनको वंदन करना चाहिए, उसी भाव से उनको प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव से उनको पुकारा था। वो मंत्र जो है ना, वो जो श्लोक है, वो अगर आपको याद होते हैं, आप कागज में लिख के आते हैं, और वो अगर आप लेकर जगन्नाथ के सामने बोलते हैं, तो जगन्नाथ जी भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिस्पॉन्स दिया था, जैसे उन्होंने राधा रानी को रिस्पॉन्स दिया था, वही भाव आपको अनुभव मिलेगा उस समय। क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रेम भाव के भगवान है वो, महाभाव के। और हमारा भाग्य है कि हमारे अस्पताल में हो रहा है वो, और हमारा भाग्य है कि हमारे अस्पताल में रोज रथ यात्रा होती है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर रोज रथ यात्रा होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, वो रथ सेवा कौन करेगा, तू कर लेना तू कर लेना तू कर लेना, आज मेरा ड्यूटी नहीं, आज मैं थक गई हूँ, आप करो। अरे मूर्ख लोग हैं हम लोग। अगर रथ सेवा हो रही है और हम लोग ऐसा सोच रहे कि अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम तो वो वाला है, उधर वाला काउंसलिंग वाला काम अच्छा है, उधर वाला तो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाने का काम अच्छा है, ये तो रथ सेवा तो अटेंडेंट का काम है, ये सोचने वाले का सोच ही रोग रोग भरी रोग क्या कहते हैं बीमार बीमार सोच है ये। दिस इज द सिक थॉट प्रोसेस, डिसीज थॉट प्रोसेस। वो रथ यात्रा खींचने से या करने से जन्म मृत्यु के बंधन टूट जाते हैं। अगर उसको क्लास फोर वर्क समझ के छोड़ देंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा है हमारा, बताओ उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम सीनियर हो गए, अभी हम वो नहीं करेंगे, अभी हम वो करेंगे, जूनियर आदमी करेंगे। रथ यात्रा यानी आप जगन्नाथ भगवान को मरीजों के पास लेके जा रहे हैं, मरीजों को उनकी पहचान करा के दे रहे हैं, परिचय करा के दे रहे हैं, उनकी कृपा का वर्षाव कर रहे हैं उनके ऊपर। और जो व्यक्ति भगवान को किसी दुखी दर्दी व्यक्ति पर प्रेम का वर्षाव करने का मौका देता है, उस पर कितना भगवान कृपा का वर्षाव करते हैं। जो उनको जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं, पति दुखी दर्द भरे लोगों को मिलकर उन पर कृपा बरसाने के लिए वो आए हैं, उन तक आप अगर उनको पहुंचा रहे हैं तो आप पर कितनी कृपा करेंगे वो। आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि उनके हाथ से फूल जगन्नाथ को चढ़े, उनकी आंखों से दर्शन प्राप्त हो, उनके हाथों से दीपक कार्तिक में प्राप्त हो, उनको हाथ जोड़कर रथ में बैठे हुए रथारूढ़ भगवान को देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का मौका दे रहे हैं आप उनको। जगन्नाथ कितने प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि बद्ध जीव जिस कारण दुनिया में फंसा हुआ है वो कारण नष्ट करने का मौका उसको मिल रहा है। जगन्नाथ को रथ में बैठे हुए देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना, वंदन करना, कुछ प्रार्थना करना उनके सामने, इतना बड़ा मौका उनको आप दे रहे हैं, तो वो करने वाले को जगन्नाथ भगवान अनंत कृपा करते हैं। राजा भी वहां पर आकर झाड़ू लगाते हैं, वो तो भंगे का काम है, वो तो चौथे ग्रेड का लोगों का काम है, लेकिन राजा जगन्नाथ के सामने भंगी बनते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हम अपना पद का और अपने पोस्ट का और सीनियरिटी का इसका उसका घमंड लेके घूमेंगे तो नरक में जाएंगे। अगर जगन्नाथ की कृपा मिल रही है हम उसको ठुकरा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हम, एक ही स्थान बचता है दुनिया में। ऐसे मैंने आज वर्णन पढ़ा कल सुबह कल शाम को कि ऐसे व्यक्ति को नरक में पाकर नरक को भी शर्म आ गई, ऐसा मैंने कल पढ़ा एक किताब में। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि ऐसा विचार किसी को करना नहीं चाहिए। बड़े गर्व से, बड़े प्रेम से, बड़े प्रिविलेज से, अपने सौभाग्य समझकर ये कार्य करना चाहिए। अगर उसका भाव हम समझेंगे ना तो वही कृति से हम परम धाम पहुंच जाएंगे भगवान के। और वही हमने भाव बदली कर दिया, उसी को बोला कि क्या है, लकड़ी की मूर्ति है, लकड़ी का रथ है, क्या काम है हृदय से उधर घुमाने का, बोरिंग काम है बहुत, अभी मैं नहीं कर सकता उसको। तो वही काम हमको भगवान के धाम के अलावा नरक में पहुंचा देगा, काम वही है। वो भाव बदल गया तो गंतव्य स्थान बदल गया उसका। इसलिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, हृदय में भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब झाड़ू मारेंगे ना तो झाड़ू मार के भी भगवत धाम चले जाएंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान को इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन से पद पे और कौन सा पकार के काम कर रहे हैं, भगवान खाली एक ही देख रहे हैं कौन से भाव से काम कर रहे हैं आप। उनके दृष्टि से कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, काम अपने आप में महान होता है, और महान तब होता है जब महान भाव से आप उसको करेंगे, तो आपका वही सबसे आसान वाला काम, सबसे छोटा वाला काम जो है ना, वो भगवान की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाता है, उसी से आपको कृपा प्रेम सब प्राप्त होता है। बाकी वो पंडिती करने से और सब कुछ पद प्राप्त करने से और अच्छा पगार लेने से भगवान प्राप्त होने कोई गारंटी नहीं है। राजा ने भी छोड़ दिया राजा पद अपना, सूती वस्त्र पहन के आया, वो बोला धिक्कार है राजा के पद पर मेरे, क्या लाभ है उसका, राजा होने पर भगवान नहीं मिल रहे और राजा होने की वजह से ही भगवान नहीं मिल रहे, तो धिक्कार है मेरे पद पर, नहीं चाहिए मुझे राजा का पद, भंगे होना अच्छा है, सूती वस्त्र पहनकर सामान्य व्यक्ति रूप के रूप में दर्शन करना अच्छा है। तो इससे क्या सीखते हैं हम रथ यात्रा से, इस कथा से हम क्या सीखते हैं? भगवान नम्रता चाहते हैं, भगवान द्वेष रहित स्वभाव चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों की सेवा करने वाले को चाहते हैं, और वो हम अपनाएंगे तो हमारी सारी कथा सुनना भी धन्य है, सारी छोटी मोटी सेवा भी धन्य है, हमारा मनुष्य जीवन धन्य है, सब धन्य है हमारा। भाव होना चाहिए, भाव की कमी है केवल, बस बाकी सब कुछ कुछ नहीं है दुनिया में। प्रभुपाद के गुरु महाराज यही कहते थे कि ये दुनिया में कुछ कमी नहीं है, एक ही कमी है बस, वो है भाव की कमी, कृष्ण भावना की कमी है बस, बाकी सब कुछ दुनिया में हो या न हो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ही नश्वर है तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें भाव होगा तो यही गोलोक वृंदावन है। जब तक यहां पर है तब तक ये गोलोक वृंदावन है, जब ये हम जीवन समाप्त होगा तब असली गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय।